मानव है मेरे राम, मेघनाथ युद्ध क्षेत्र में है। मेघनाथ को भरोसा है अपनी अभिचार शक्ति पर, साथ में भरोसा है दिव्यास्त्रों के प्रयोग पर। मेघनाथ ने तय किया है कि इस युद्ध को अंतिम बनाने के लिए वो अपनी दोनों शक्तियों का प्रयोग एक साथ करेगा। युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर मेघनाथ अदृश्य होकर राम लक्ष्मण सहित पूरी सेना पर ब्रह्मास्त्र का सीधा प्रयोग कर देता है। ब्रह्मास्त्र चल गया है सीधे अगेंस्ट द प्रोटोकॉल। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग सीधे नहीं किया जाता है, नीति यही है, लेकिन राक्षस नीति को कहां मानते हैं। ब्रह्मास्त्र चल गया है विभीषण और हनुमान, विभीषण और हनुमान। हनुमान केवल दो अप्रभावित रहते हैं, क्योंकि दोनों को ही ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ है। राम लक्ष्मण सहित पूरी सेना मूर्छा में चली जाती है। जामवंत अर्ध मूर्छा में आ गए, विभीषण फिर से मोर्चा संभालते हैं। युद्ध में और प्रेम में कौन कब काम आएगा पता नहीं होता मेरे राम। विभीषण मोर्चा संभालते हैं और हनुमान को साथ लेकर पूरी सैनिक भूमि में सक्रिय हो जाते हैं। संकट की घड़ी है। जामवंत में थोड़ी चेतना देखकर विभीषण उनके पास पहुंचते हैं और सुषेण वैद्य तो स्वयं मूर्छा में है और जामवंत से जैसे ही विभीषण ने उनकी कुशलता के बारे में पूछा, देखो मेरे राम क्या बात होने जा रही है। विभीषण ने पूछा जामवंत से कि ऋक्ष श्रेष्ठ आप कैसे हैं, सकुशल तो हैं। बिना प्रश्न का उत्तर दिए जामवंत ने प्रतिप्रश्न किया कि हनुमान जीवित हैं या नहीं। हनुमान खड़े हैं साथ में लेकिन दृष्टि बाधित है, इसलिए जामवंत नहीं पहचान पा रहे हैं हनुमान को और प्रश्न कर रहे हैं विभीषण से कि हनुमान जीवित हैं या नहीं। विभीषण को घोर आश्चर्य हुआ कि जामवंत राम की कुशलता के बारे में नहीं पूछ रहे, लक्ष्मण के बारे में नहीं पूछ रहे, सुग्रीव के बारे में नहीं पूछ रहे, किसी के बारे में नहीं पूछ रहे, केवल हनुमान के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्यों जानना चाहते हैं कि हनुमान जीवित हैं या नहीं। तभी जामवंत कहते हैं विभीषण से कि यदि हनुमान है तो राम है, हनुमान है तो राम है, यदि हनुमान है तो राम है, राम है तो सारे वानर भी हैं, युद्ध की विजय हमारे साथ हो। विभीषण के साथ खड़े हनुमान आगे बढ़ते हैं और जामवंत को स्पर्श कराकर अपने जीवित होने का प्रमाण देते हैं। जामवंत तो देख नहीं पा रहे हैं हनुमान को। जामवंत हनुमान को निर्देशित करते हैं कि वो तत्काल हिमालय जाकर संजीवनी औषधि लेकर आए। इस औषधि से राम सहित सभी का जीवन लौट आएगा। जामवंत हनुमान को कुल चार प्रकार की औषधियां लाने को कहते हैं, संजीवनी, विषकल्यकारिणी, सुवर्णकारिणी एवं संधानी। औषधियों की पहचान भी जामवंत बताते हैं। मेरे राम देखो, युद्ध है, रणनीति मौन है, प्रत्युन्न मति अपना कार्य कर रही है। केवल रणनीति पर भरोसा मत करना मेरे राम, क्योंकि रणनीति एडवांस में बनाई जाती है और प्रत्युन्न मति जो काम करती है वो फील्ड में करती है। क्योंकि जब युद्ध क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है, जब योजना परियोजना में बदल जाती है, कार्य शुरू हो जाता है, तो कई बार जो हमने प्लान किया है, सोचा है, वैसा घटता ही नहीं, घटता कुछ और है। तब रणनीति काम नहीं करती, तब ब्लू बुक काम नहीं करती, एम्बुलेंस खड़ी रह जाती है, जीवन रक्षक औषधियां रखी रह जाती है, और एक सामान्य सी कार में लेकर के भारत के प्रधानमंत्री को लोग भागते हैं अस्पताल की तरफ। वह प्रत्युन्न मति काम कर रही है, रणनीति काम नहीं कर रही है। याद करो सन 84, वायु वेग से हिमालय जाकर औषधियां लेकर शीघ्र ही लौटते हैं समीरज लौट आए हैं, हनुमान लौट आए हैं, औषधियों वाला पहाड़ लेकर के लौट आए हैं। राम लक्ष्मण सहित पूरी वानर सेना पुनः चैतन्य हो जाती है, और लंका में जो विजय का उत्सव चल रहा था वो थम जाता है, जयोत्सव रुक जाता है। मानव है मेरे राम,
हर श्री राम भे त्यों हनुमान, हर श्री राम भे त्यों हनुमान, अतिक तज्ञ प्रभु परम सुजाना, अतिक तज्ञ प्रभु परम सुजाना, प्रभु प्रला आई गए हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस।
मानव है मेरे राम, लंका में रुक गया है जयोत्सव, लेकिन रावण सावधान हो गया है। वो मेघनाथ को अब दोबारा रणभूमि में सीधे नहीं भेज रहा है, रावण भेजता है कुंभकर्ण के पुत्रों कुंभ निकुंभ को, कुंभ निकुंभ को भेजता है और यूपाक्ष को भेजता है, शोणिताक्ष को भेजता है, प्रंजय और कंपन को लड़ने के लिए भेजता है। रोक लिया है उसने इंद्रजित मेघनाथ को कि रुक जा भाई, अभी तो युद्ध समझ में नहीं आ रहा है। पर एक दांव खेल दिया है रावण ने अपने सुख के लिए, अपने बेटे की रक्षा के लिए, और तमाम अपने भतीजों को युद्ध करने के लिए भेज दिया है। इन 6 राक्षसों का वध करने में वानर सेना को व्यूह रचना करनी पड़ गई है। अंगद मैंद दुविद सुग्रीव हनुमान मिलकर के इनका वध करते हैं। जामवंत और सुषेण भी सहायता करते हैं। रावण की लंका में अब वीर राक्षस लगातार घट रहे हैं। इन 6 राक्षसों की आहुति के बाद भी ताजा ताजा जो 6 राक्षसों की बलि चढ़ी है, खर्च हो गए हैं, रावण नियति के दिए गए विकल्प को नहीं चुन रहा है। नियति का प्रत्यक्ष स्वरूप प्रकृति है, प्रकृति लगातार रावण को संकेत दे रही है, लेकिन रावण तो प्रारब्ध के विपरीत स्वयं को प्रमाणित करना चाहता है। रावण तत्काल ही खर के पुत्र मकराक्ष को युद्ध करने के लिए भेज देता है। मकराक्ष, मकराक्ष के पास भी अमोघ अस्त्र शस्त्र हैं। वो एक नई चाल भी चलता है मकराक्ष। वानर यूथ पतियों या राम लक्ष्मण को अपना लक्ष्य बनाने की जगह मकराक्ष वानर सेना को सामूहिक रूप से यमराज के पास भेजने लगे। एकदम से वो कत्लेआम शुरू कर देता है वानर सेना में। वानर सेना में काल नृत्य करने लगता है। राम स्वयं मोर्चा संभालते हैं और आग्नेय अस्त्र से मकराक्ष को भी यमराज के पास रवाना कर देते हैं। रावण स्वसुख ने बंद कर दी है उसकी दृष्टि। महाअवसर सामने खड़ा है, देख नहीं पा रहा है रावण। रावण के लिए अब स्थिति बड़ी विकट हो गई है। पीछे हटना भी तो संभव नहीं है। मेघनाथ के अलावा रावण परिवार के सभी योद्धा युद्ध में खर्च हो गए हैं। मेरे राम, ये जो शब्द खर्च में बोल रहा, भारत के श्रेष्ठतम व्यंगकार रहे हैं, जो थोड़े से मेरी और मेरे से ज्यादा एज के लोग हैं वो जानते हैं, सुना होगा, पढ़ा होगा। केपी सक्सेना साहब का नाम, लखनऊ के थे, स्टेशन मास्टर रहे जीवन भर और श्रेष्ठतम व्यंगकार थे। वो मरने के लिए खर्च होना शब्द प्रयोग करते थे अपने कहानी और लेखों में। उनसे उधार लेकर के ये शब्द मैं तुम्हें दे रहा हूं और केपी सक्सेना जी को याद भी कर रहा हूं। अगर रावण समर्पण भी कर दे और जीवित बच भी जाए तो जीवन का कौन सा मूल्य वो जी पाएगा? मेरे राम, एक बड़ा प्रश्न सामने खड़ा हो गया है। लेकिन रावण के सामने एक महा अवसर सामने खड़ा है। मैंने पहले भी कहा है महा अवसर, लेकिन स्वसुख के कारण रावण इसे देख नहीं पा। रावण अगर इस समय मेघनाथ के बारे में सोच लेता और स्वयं के युद्ध को स्व तक सीमित कर लेता तो जीवन के अंतिम पक्ष में ढेरों बुराइयों के साथ थोड़ी सी भलाई भी छोड़कर जाता रावण। रावण के लिए महाअवसर इसलिए था कि वो मेघनाथ को शपथ पूर्वक युद्ध से विरत कर देता कि नहीं जाओगे मेरे पुत्र, अब तुम युद्ध में, तुम्हें मेरी शपथ है, और स्वयं को राम से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत कर देते। साथ ही मेघनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर अग्रिम राज तिलक भी कर देता। साथ ही मेघनाथ को आदेशित कर देता कि यदि वो युद्ध में मारा जाए तो सीता को ससम्मान राम को लौटा देना। युद्ध में यदि वो राम को परास्त कर देता तो विजयी होकर के लौट आता, और जैसे कि जैसे कि वो स्वयं उसे संभावना लग रही थी कि यदि वो राम के हाथों मारा जाता तो मेघनाथ और उसका वंश लंका में जीवित बच जाता। लंका पर अधिकार को लेकर ऐसी स्थिति में विभीषण कोई जिद भी नहीं करते, क्योंकि मेघनाथ के सामने विभीषण का कोई दावा भी नहीं बनता था, और विभीषण राम के साथ अयोध्या भी जा सकते थे। रावण इस महा अवसर को देख नहीं देख पाए। और मेघनाथ की आहुति भी दे बैठा, आहुति दे बैठा मेघनाथ की, जो कि स्व सुख की कामना ने अपनों के दुख भुला दिए थे। मेघनाथ के वध के बाद अब तो रावण को राम से ही लड़ना है, लड़ना तो केवल अब राम को ही है। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम।
रामानुज कहाँ राम कहाँ, असे कहीं छाड़े से प्राण। धन्य धन्य तव जननी कहे अंगद हनुमान, कहे अंगद हनुमान। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो, लंका द्वार राखी पुनि आयो, राखी पुनि आयो, राखी पुनि आयो।
मानव है मेरे राम। अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां राम रावण युद्ध ठहर गया है। ठहर इसलिए गया है कि कुंभकर्ण, मेघनाथ और बाकी के जो रावण कैंप के योद्धा थे वो सभी खर्च हो गए। युद्ध अभी ठहरा हुआ है। आइए थोड़ी सी चर्चा यहां मैं करता हूं आपसे राम रावण युद्ध में हनुमान की। यहां एक प्रसंग और भी मैं आपको नरेट करता हूं कि युद्ध ठहरा हुआ है। क्यों ठहरा हुआ है? क्योंकि अब रावण अति भयाक्रांत हो गया है। इसलिए शुक्राचार्य जो दैत्य गुरु हैं उनके परामर्श पर अपावन यज्ञ की तैयारी में जुट गया है रावण, क्योंकि रावण पहचान गया है कि उसका वध अब नियति के भाल पर लिख दिया है प्रकृति ने। लंका कांड पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और इसलिए इस महासमर में दो करैक्टर बड़े महत्वपूर्ण हैं, हनुमान और विभीषण। तो पहले बात हनुमान। राम ने युद्ध की इस प्रकार संरचना बनाई थी कि सुग्रीव, हनुमान और अंगद को यद्यपि रावण के किसी बड़े योद्धा का वध नहीं करना था, लेकिन इन सभी योद्धाओं को युद्ध के माध्यम से अमर हो जाना था। कोई भी घटना जब घटती है, कोई अभियान जब परवान चढ़ता है और उसके बाद कथाओं का प्रारंभ होता है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि भूमिका में कौन था। राम ने हनुमान को हमेशा विघ्नहर्ता के रूप में देखा है, एक डैमेज कंट्रोलर के रूप में देखा है। डैमेज कंट्रोलर की बड़ी भूमिका हनुमान को दी है राम। इसलिए प्रत्यक्ष युद्ध में हनुमान को विशेष अवसर पर ही प्रयोग किया जाता था, क्योंकि जो व्यक्ति अभियान का प्रत्यक्ष करता है, प्रत्यक्ष करता होता है, वो आपदा प्रबंधन नहीं कर सकता। मेरे राम याद करो, जब किष्किंधा जा रहे थे राम लक्ष्मण, तो ऋषिमुख पर्वत से पहले राम को हनुमान मिलते हैं और लंका युद्ध तक सुग्रीव सहित हनुमान और वानरों का साथ रहता है, सभी का साथ रहता है। लेकिन लंका विजय के पश्चात अकेले हनुमान ही हैं जो अयोध्या वापस आने पर भी राम के साथ स्थायी रूप से जाते हैं। ये राम का हनुमान को दिया गया विशेष पुरस्कार है, जबकि जो लीडर होता है वो व्यक्ति की योग्यता की दीर्घ जीविता को पहचानता है और उसे सम्मान देना भी जानता है। ये सफलता का एक ऐसा रहस्य है जिसे जानते बहुत लोग हैं। हाँ मेरे राम, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन लालच के कारण ऐसे तत्व को अपना नहीं पाते। राम जब सुग्रीव की तलाश में किष्किंधा की ओर जा रहे हैं तो पहली मुलाकात होती है हनुमान से। हनुमान राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर सुग्रीव से मिलाने ले जाते। हनुमान ही सागर तट पर अंगद के साथ जाते हैं। यहां अंगद तो एक फॉर्मल लीडर है इस टीम के, मुख्य कार्यकर्ता तो हनुमान ही। हनुमान लंका पहुंचते हैं, मार्ग में सुरसा सिंह का लंकिनी जैसी बाधाएं पार कर जाते हैं। विभीषण को खोजते हैं हनुमान, सीता से भेंट करते हैं, लंका को जलाते हैं, लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए संजीवनी लाते हैं हनुमान। राम लक्ष्मण का अपहरण कर जब अहिरावण ले जाता है, अहिरावण ले जाता है राम लक्ष्मण का अपहरण करके, पूरी सेना में सन्नाटा है। वो विभीषण ने ही बताया था कि अहिरावण ले गया है। कहां ले गया है, कहां ले गया है? पाताल लोक में, हम सब ने सुना है अहिरावण ले गया है पाताल लोक। ये पाताल लोग कहां है मेरे राम? छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, वहीं पर है पाताल लोग। अभी भी 90 फीट नीचे है वो जगह जमीन के तल से, और वहीं पर पाताल लोग था और अहिरावण का साम्राज्य था छिंदवाड़ा एमपी में, वहीं पर ले गया था। वहीं से मुक्त कराया हनुमान ने, विभीषण ने बताया, मार्ग दिखाया, छुड़ा के लाया कौन? हनुमान। और फिर अपने कंधों पर बैठा करके हनुमान ले आए राम लक्ष्मण को सुवेल पर्वत श्रीलंका में, जो कोई नहीं कर सकता वो हनुमान करते हैं, जो कोई नहीं कर सकता वो हनुमान करते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी संगठन के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता मेरे राम, वरदान होता है। राम हनुमान का महत्व और उनकी ऊर्जा और बौद्धिक क्षमता को पहचानते हैं, इसीलिए राम हनुमान को अपना साथी बना लेते हैं, ये हम सब जानते हैं कि हनुमान ने स्वयं को सेवक के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन राम ने हनुमान को साथी बनाया। और साथी काहे का? कर्म का साथी। जो कर्म का साथी होता है वही तो साथ निभाना जानता है। शेष जो टीम मेंबर्स होते हैं वे कर्म के साथी नहीं होते हैं, वे कर्म के अनुगामी होते हैं। अनुगामी होने में और साथी होने में एक जमीन और साथ में फलक का अंतर है, क्योंकि जो साथी होता है वो भोक्ता भी होता है। जो कर्म करता है इज द डूअर, वो तो डूअर है, करता है, दृष्टा के भाव से कभी बड़ी सफलता आज तक किसी को नहीं मिली मेरे राम इस जीवन में। मैं भौतिक सफलता की बात करता हूं, आध्यात्मिक की नहीं, धार्मिक की नहीं। जब तक भौतिक सफलता तुम्हारे कदमों को नहीं चूमेगी, तुम्हारा अस्तित्व इस सृष्टि में पानी की एक बूंद की तरह भी नहीं। कहां भरी बरसात और कहां पानी की बूंद, तुम्हें तो भरी बरसात बनना है। और भरी बरसात में बनने के लिए भाई समुद्र जो होता है पानी का, जल का था संगमन है, लेकिन समुद्र में अपना पानी है और नदियों का दिया हुआ उधार का पानी भी तो होता है। सब कुछ उसका अपना कहां होता है, यही तो शक्ति और सामर्थ्य में अंतर है। तो तुम्हें सामर्थ्यवान बन, और सामर्थ्यवान दृष्टा होकर के नहीं बन सकते, कर्ता होना पड़ेगा। पर कर्ता से जाना दृष्टा की ओर, ये तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ये शुरू होगा 70 साल की उम्र के बाद, अभी मत सोचो दृष्टा होने के लिए। 70 के हो जाओ तब सोचना, क्योंकि 4 आश्रमों में अब वानप्रस्थ संन्यास मिल गया है। तो पहले तो 70 वर्ष तक जो है गृहस्थ और वानप्रस्थ का मजा लो, तब आके सोचना। तो बी ए डूअर, पहले कर्ता बनो। जो पलायनवादी है मेरे राम, जो निकम्मा है, वो सबसे पहले दृष्टा होने की सोचता है कि मैं तो देखूंगा, करो तुम, मैं मजा लूंगा। नहीं, दृष्टा भाव बहुत बड़ी चीज है, और वो इस उम्र की बात नहीं, तुम्हारी उम्र की बात नहीं है। जो 50 से नीचे है उनके लिए तो है ही नहीं। हर चीज अपने वक्त के लिए हो, वक्त से पहले के लिए नहीं हो। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम।
महावीर बिन आपो भगवाना।